الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمه صديقة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو بس ہم مثالی ماں کا جو موضوع پڑھ رہے ہیں اپنے حضرت پیر جو فقار احمد نقشبندی ان کی کتاب مثالی عورت میں سے، یہ موضوع جو ہے وہ تقریباً اپنے اختتام پر ہے. پچھلی کلاس میں ہم نے ماؤں کو خاص نصیحت والا موضوع پڑھنا شروع کر دیا تھا. پیج نمبر 139 کے اوپر یہ تھا، اور اس میں دعا کے موضوع کے اوپر کافی ساری باتیں ہوئی تھیں. امید ہے کہ آپ کو باتیں یاد ہوں گی اور آپ نے اپنے عمل میں بھی ان کو لانا شروع کر دیا ہوگا، اگر پہلے سے وہ آپ کے عمل میں نہیں تھیں. ٹھیک ہے، تو دعا کے بارے میں کہ دعا کیا چیز ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اس کے راستے میں کیا کیا باتیں رکاوٹ بنتی ہیں. ٹھیک ہے، کہ جس کی وجہ سے پھر ہم سے دعا مانگی نہیں جا رہی ہوتی، یا جو ہے وہ دعا اس طرح سے نہیں مانگی جا رہی ہوتی جس طرح سے کہ دعا کو مانگنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آخر میں ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہ ساری رکاوٹیں ہیں ہماری زندگی میں کہ جن کی وجہ سے ہم سے دعا مانگی نہیں جا رہی ہوتی، تو ان رکاوٹوں کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر آپ کے سامنے وہ عربی کا شعر بھی جو ہے پڑھا تھا، جو کہ ہمارے حضرت اکثر توبہ کے موضوع کے اوپر بات کرتے ہوئے پڑھا کرتے تھے. تو وہ شعر بھی، بلکہ آپ لوگوں کے ساتھ گروپ پہ شیئر بھی کرنا ہے، شعر کو شیئر بھی کرنا ہے. تو اسی ٹاپک پہ پھر مزید آگے پڑھتے ہیں، پیج نمبر 140 کے اوپر، 140 کے نہیں سوری، یہ تو پڑھ لیا تھا، یہ واقعہ تو ہم نے پورا پڑھ لیا تھا نا. ہاں، بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ والا واقعہ. تو پھر آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، یہ پیج نمبر 141 کے اوپر تھا، کہ بچپن میں ان کی آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی تھی اور وہ نابینا ہو گئے تھے، مگر ان کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے ان کی والدہ کی دعا پر ان کی بینائی کو دوبارہ لوٹا دیا تھا. اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی نیکی کے لیے اللہ سے دعائیں بھی مانگتی رہے. ٹھیک ہے، بچوں کی نیکی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی رہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ماں کی دعا کو قبول کرتے ہیں. مسئلہ جہاں پر یہ ہو جاتا ہے، جو کہ آج کل بڑا کامن ہوا ہوا ہے، کہ ماں جو ہوتی ہے نا وہ بچے کی نیکی کے لیے تو دعا مانگ رہی ہوتی ہے، لیکن خود نیک بننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو وہ یعنی پھر وہ دعا جو مانگ رہی ہوتی ہے نا، وہ دعا پھر اس کے اندر اثر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ دعا کی جو مانگ رہی ہوتی ہے نا، آج کل جو چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، آج کل جو نارم ہے نا، وہ انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ماں بچے کی نیکی کے لیے جو دعا مانگ رہی ہوتی ہے نا، وہ دراصل نیکی کی دعا نہیں مانگ رہی ہوتی. ٹھیک ہے، وہ نیکی کی دعا نہیں مانگ رہی ہوتی، وہ اصل میں کچھ اور دعا مانگ رہی ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں بچے کے نیک ہونے کی دعا مانگ رہی ہوں، لیکن وہ اصل میں نیک ہونے کی دعائیں نہیں مانگ رہی ہوتی. ٹھیک ہے نا، تو اب جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی یہ ایک کھچڑی بنی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو ایسی جو کھچڑی والی دعائیں ہوتی ہیں نا، تو پھر یہ دعائیں جو ہے وہ کیونکہ یہ کھچڑی ہیں، یہ دعائیں تو ہیں ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا قبول کریں گے بھائی اس کو. ٹھیک ہے نا، آپ یعنی وہی بات ہے، وہ بات ہے کہ جو ہمارے ایجپشن بھائی بہن ہوتے ہیں نا، تو وہ جو ہے نا پتہ نہیں کس وجہ سے ان کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ جیم کو جو ہے نا وہ گاف پڑھتے ہیں، گاف کا ساؤنڈ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جو بیچارے بالکل ہی کورے ہوتے ہیں اس معاملے میں، ٹھیک ہے، تو وہ نا ایون قرآن مجید کے آیات جو ہے نا، ان میں جو جیم ہوتا ہے نا، اس کو بھی گاف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور حدیث کے اندر جو جیم ہوتا ہے اس کو بھی گاف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب جو ہے نا وہ طواف مانگتے ہوئے کوئی مصری صاحب جو ہے نا وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہم انی اسألک الجنہ. ٹھیک ہے، جنہ کی بجائے گنا. तो अब गन्ना जो है वो तो आपको पता है कि हमारे हजरत जो है वो गन्ने के बागात के बराबर में ही रहते हैं, दरमियान में ही रहते हैं, और जो है वो सारा का सारा काम भी जो है वो शुगर मिल में ही करते थे और गन्नों का ही सारा काम होता था। ठीक है, तो अब हजरत को गन्ने बड़े याद रहते हैं क्योंकि गन्नों के दरमियान ही रहते हैं, गन्नों का ही सारा काम करते थे। तो हजरत ने फरमाया बड़ा मजे का लतीफा कि एक मिस्री साहब जो है ना वो दुआ मांग रहे थे तवाफ करते हुए, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असलुकल गन्ना। तो भाई अगर कयामत के दिन अल्लाह ताला ने उसको गन्ना पकड़ा दिया जन्ना की बजाय, तो फिर क्या करेगा ये? ठीक है ना, ये भाई तुम तो गन्ना मांग रहे थे ना, ये लो गन्ना, जन्ना मांगते थे तो मैं जन्ना देता। ठीक है, तो बात यही है कि भाई हम मांग जो है ना वो कुछ और रहे होते हैं अब, और अल्लाह ताला फिर वही देंगे ना जो हम मांग रहे हैं अल्लाह ताला से। अब माँ जो बेटे की नेकी का तो नाम ले रही है ना कि मैं बेटे के नेक होने की दुआएं मांग रही हूँ, लेकिन असल में वो क्या दुआएं मांगना चाह वो असल में क्या मांग रही है? वो मांग रही है कि बेटा मेरे साथ अच्छा हो जाए, बेटा मेरे साथ अच्छा हो जाए, और मेरी हर बात का ख्याल रखना शुरू कर दे, मेरी हर बात मानना शुरू कर दे। ठीक है ना, तो भाई ये तो नेकी नहीं होती कि माँ की हर बात मानना शुरू कर दो चाहे कुछ भी हो। ये तो उम्मीद है कि पिछली क्लास में ये बात क्लियर हुई होगी ना। ठीक है, कि आप माँ की बात मान रहे हैं लेकिन इसके अंदर अगर आप अल्लाह की बात को तोड़ रहे हैं या आप जो है वो किसी दूसरे का हक जाया कर रहे हैं माँ की वजह से, तो फिर तो नेकी तो ना हुई ना ये। लेकिन माँ यही चाह रही होती है और इसी को वो कहती है कि मैं बेटे के नेक होने की दुआएं मांग रही हूँ, हालांकि वो नेक होना इसको नहीं कहता है। ठीक है, तो भाई फिर बेटा नेक कैसे बनेगा? तो एक ये बड़ी वजह होती है कि जिसकी वजह से जो है ना वो नेकी की दुआएं मांगने के बावजूद बेटा नेक नहीं बन रहा होता या बेटी नेक नहीं बन रही होती, एक वजह ये होती है। और एक और भी वजह होती है, और दूसरी वजह क्या होती है वो ये नहीं होती कि माँ खुद नेक नहीं होती, वो खुद गुनाह कर रही होती है तो इस वजह से उसकी दुआ कबूल नहीं हो रही होती, नहीं ये वजह नहीं होती। गुनाहगार माँ की दुआएं भी औलाद के हक में कबूल होती हैं। ठीक है ना, लेकिन आजकल जो मसला है ना वो ये नहीं है कि माँ गुनाहगार है और बेटे के नेकी के लिए दुआ मांग रही है, बल्कि आजकल क्या मसला होता है कि अगर आप बता दें, ये बड़ा अच्छा वैसे एक सवाल आ गया है। ठीक है, अगर माँ गुनाहगार हो और बेटे की नेकी के लिए दुआ मांग रही हो तो अल्लाह कबूल कर लेते हैं उसकी दुआ। ठीक है, लेकिन आजकल क्या चल रहा है, आजकल क्या हो रहा होता है? एक तो ये बात हमने कर दी ना जिमनी तौर पे कि माँ जो है वो उसको नेक बनाने के लिए दुआएं नहीं मांग रही होती, माँ खुद सिर्फ ये दुआएं मांग रही होती कि मेरे साथ वो अच्छा हो जाए बस। ठीक है ना, दूसरा क्या मसला होता है आजकल कि माँ जो है ना वो नेकी की दुआएं मांग रही है लेकिन असल में वो वही जन्ना मांग रही है, लेकिन असल में गन्ना है, जन्ना गन्ना वाला मसला चल रहा होता है आजकल। क्या वो क्या होता है? वो ये होता है कि वो बेटे के गुनाह के लिए दुआ कर रही होती है। हाँ ये भी सही कहा आपने वैसे, ठीक है ना, क्योंकि यही हो रहा होता है कि आजकल जो है ना वो ये नहीं है कि हम गुनाहगार हैं, हमसे जो है वो गुनाह नहीं छूट रहे, नहीं, बल्कि हमने गुनाह और सवाब की डेफिनेशंस को तब्दील कर दिया है, हमने डेफिनेशंस को तब्दील कर दिया है। ठीक है ना, तो अब हम उस चीज की दुआ मांग रहे हैं जो कि नेकी है ही नहीं असल में, जो कि गुनाह का काम है। जैसे मिसाल के तौर पर एक मिसाल खाली, ठीक है ना, कि मेरा बेटा जो है ना वो बड़ा पॉपुलर आर्टिस्ट बन जाए, है ना, मेरा बेटा जो है वो टीवी के अंदर जो है ना बड़ा मकबूल हो जाए। ठीक है ना, माँ इसकी लिए दुआ मांग रही है, माँ दुआ मांग रही है कि वो जो है ना वो उसका बहुत बड़ा सा जो है ना वो एक हराम किस्म का कारोबार है, सूदी कारोबार कोई है, तो उसका सूदी कारोबार जो है ना वो चमक जाए, वो कामयाब हो जाए। ठीक है ना, और वो उसको कामयाबी समझ करके दुआ मांग रही है, हालांकि वो तो नेकी की दुआ नहीं है ना, वो तो हराम की दुआ मांग रही है ना असल में। ये तो एक मिसाल से आपको खाली समझा रहे। ठीक है ना, मेरा बेटा क्रिकेट स्टार बन जाए या मेरा बेटा जो है ना वो नाउज बिल्ला गैर महरम लड़कियों के दरमियान वो बड़ा पॉपुलर फिगर बन जाए, इस किस्म की दुआएं।
तो अब ये तो नेकी की दुआ तो नहीं आना। यानी कहने का मकसद क्या है कि माँ के शऊर में, माँ के जहन में नेकी और गुनाह की तारीफात ही बदल चुकी हैं। तो अब ऐसे नेकी की दुआ तो फिर अल्लाह ताला ने नहीं कबूल करनी है ना, ये तो बल्कि हमारे हाथ में बेहतर ही हो गया कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं कर रहा, वरना अगर कबूल कर ले तो फिर तो यानी हम अपने लिए खुद जहन्नुम मांग रहे होते हैं ना फिर। ठीक है, तो इस वजह से ना ये जहालत जो है ये। अच्छा एक और बात भी सुन लीजिए प्लीज, कि देखें आप लोग जो ये बातें सुन रहे हैं ना, ठीक है ना, अब ये आप कि सबके हक में, ये मैं सिर्फ एक खैर ख्वाही की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि देखें ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना ये आगे बढ़ाएं, ठीक है ना, अगर ये आप आगे नहीं बढ़ाएंगे ना इन बातों को तो बहुत नुकसान हो, बहुत नुकसान। ठीक है, अगर आप इनसे एग्री कर रहे हैं तो आप इनको आगे बढ़ाएं, लोगों को बताएं इसके बारे में, इनको लेके अपने पास खाली बैठ ना जाए। ठीक है, क्योंकि अगर आप लेकर के अपने पास खाली बैठ गई और किसी दूसरे को नहीं बताया, इसका नुकसान आपको देखना पड़ेगा, इसका नुकसान आपको सहना पड़ेगा, और फिर वो बहुत तकलीफदेह मामला हो जाता है। ठीक है, तो जब हक का इल्म हो और आप उसको हक समझ भी रही हैं, आप जान भी रही हैं, क्योंकि अगर आप इससे इनकार कर रही होती तो कम से कम चैट रूम लोगे ऊपर डायरेक्ट मैसेज लिख करके आप कुछ बता रही होती कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता बल्कि ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर आप इससे एग्री कर रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आप तक एक हक पहुंच गया, आपने उसको हक मान लिया। ठीक है, अब इसके ऊपर खुद तो अमल करना ही है, इसके मुताबिक खुद तो अपने गलतियों की इसलाह करनी है, लेकिन साथ साथ एक और भी बात याद रखें कि ये हमारे लिए लाजमी है कि हम इसको आगे बढ़ाएं। ठीक है ना, हम इसको आगे बढ़ाएं, हम दूसरों को बताएं, अगर नहीं बताएंगे ना दूसरों को, कल को इसका खुमियाजा भुगतेंगी किसी ना किसी शक्ल में, इसका खुमियाजा भुगतेंगी, और फिर जो है ना वो रोने का फायदा नहीं, फिर रोने का फायदा। ठीक है, अल्लाह की मदद आएगी जब आप अल्लाह के दीन की मदद करें, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे यानी अल्लाह के दीन की मदद करोगे, यानी जो हक तुमने सीखा है इस दीन से उस हक को तुम फैलाओगे अल्लाह के बंदों में, तब अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे। और अगर तुम ये काम नहीं करोगे ना, इसका क्या है, इसका इसका फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन क्या है, इसका फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन ये है कि अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद नहीं करोगे ना, अल्लाह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। और फिर क्या होता है, जब अल्लाह की मदद नहीं होती तो फिर हम फंस जाते हैं, और हम फंस जाते हैं और फिर हमें उस गर्दाब में से निकालने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई भी हमें नहीं निकाल सकता अपने गर्दाब से। ठीक है, तो खाली अपने अमल के ऊपर इक्तफा करके बैठना ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वी कैन नॉट अफोर्ड लिविंग विदाउट अल्लाह हेल्प, वी कैन नॉट अफोर्ड इट। ठीक है, उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा अगला टॉपिक जो है वो माँ की मोहब्बत। तो हजरत फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया में माँ को एक नमूने के तौर पर बनाया है कि मेरे बंदों, अगर तुम मेरी रहमत का दुनिया के अंदर अमली तौर पर मंजर देखना चाहते हो तो एक माँ को देखो कि वो अपनी औलाद से कितने रहम का मामला करती है, उसकी ममता कैसी होती है। चुनाचे माँ को औलाद से इतनी मोहब्बत होती है कि वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है और इस कुर्बानी को कुछ समझती भी नहीं। ठीक है, तो असल मोहब्बत जो होती है ना वो यही होती है कि जिससे मोहब्बत है उसके लिए जो भी करती है ना उसको छोटा समझती, या जिसको जो 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 जिससे मोहब्बत करता है वो उसके लिए जो भी करता है ना वो उसको छोटा समझता। ठीक है, माँ की मोहब्बत तो एक मिसाल है उसकी, सबसे ज्यादा मोहब्बत किसको किसके साथ है? सबसे ज्यादा, इवन माँ से भी ज्यादा मोहब्बत, ठीक है ना, वो अल्लाह को अपने बंदों के साथ, ठीक है, अल्लाह को अपने बंदों के साथ है, मानने वाले बंदों के साथ। जो इनकार करते हैं अल्लाह उसके रसूल का, अल्लाह की बात का, तो उनके साथ भी अल्लाह को मोहब्बत होती है, लेकिन उसकी एक कल्मिनेशन पॉइंट है, मौत के ऊपर वो खत्म हो जाती है, ठीक है ना, मौत के ऊपर वो मोहब्बत खत्म हो जाती है। यानी जो ना मानने वाले बंदे होते हैं ना, मौत से पहले पहले तक तो अल्लाह ताला उनको बुलाता रहता है, बुलाता रहता है, उनके लिए जो है ना वो असबाब पैदा करता रहता है कि वो मान जाए, मान जाए, मान जाए, जन्नत के हकदार बन जाए। लेकिन अगर वो मौत तक नहीं मानते तो फिर उसके ऊपर खत्म, अब उसके बाद अजाब शुरू, और वो हमेशा हमेशा का अजाब होता है, ठीक है। तो अल्लाह को अपने बंदों से सबसे ज्यादा मोहब्बत है, और उसी तरीके से रिवर्स, ठीक है ना, इसका जो रिप्लाई होती है वो क्या, कि जो अल्लाह के मानने वाले बंदे होते हैं ना, उनको अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है। वल्लज़ीन आमनू अशद्द हुब्बल, ईमान वालों को अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है, और अल्लाह ताला को अपने ईमान वाले बंदों से सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना, वो भी जो अपने बंदों को जो दुनिया की नेमतें देते हैं ना, मता, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मताउद दुनिया कलील, ये दुनिया की जो मालो मता, जो भी मैंने आपको नेमतें दी हुई हैं, और इतनी दी हुई हैं कि मैं खुद ये बात कह रहा हूं कि इन तउद्दू नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा, कि तुम अगर अपने ऊपर मेरी नेमतों का शुमार करना चाहोगे तो तुम शुमार नहीं कर सकते। इतनी सारी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं मताउद दुनिया कलील, है ना, मैंने बहुत थोड़ा दिया तुम्हें, ठीक है ना। तो जिससे मोहब्बत होती है उसको दे करके थोड़ा समझता है। उसी तरह जो ईमान वाले होते हैं ना, तो उनको अल्लाह ताला से चूंकि शदीद मोहब्बत होती है, तो अब वो अल्लाह ताला की कितनी ही इबादत कर ले, ये इबादत क्या है कि हम अल्लाह ताला को अदा कर रहे हैं ना, हम अल्लाह ताला को दे रहे हैं, फराइज तो चले हम कर्ज अदा कर रहे हैं, लेकिन नवाफिल तो हम एडिशनल अल्लाह ताला को दे रहे होते हैं ना, ठीक है। लेकिन कितनी ही इबादत कर लें, ईमान वाले हमेशा उसको थोड़ा समझते हैं, है ना। मा अबदना का हक इबादत ही व मा, यानी क्या है वो दूसरा, व मा अबदना का हक इबादत, कि मैंने अल्लाह आपकी इबादत का हक अदा नहीं किया, ठीक है ना। तो ये उसूल है, और यही उसूल जो है वो माँ की शख्सियत के अंदर भी हमें नजर आ रहा होता है, कि वो अपना सब कुछ कुर्बान भी कर देती है और इस कुर्बानी को कुछ समझती ही नहीं है, ठीक है। अब वो बेचारी तो उसके पास तो खजाने तो नहीं है देने के लिए, तो उसको तो कुर्बानी ही देनी पड़ती है। कुर्बानी का मतलब क्या होता है कि थोड़ी जो चीज होती है ना आपके पास, तो वो भी आप अपने ऊपर इस्तेमाल करने के बजाय दूसरे के ऊपर इस्तेमाल कर दें, इसको कुर्बानी देना कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों के लिए कुर्बानी नहीं देते, क्योंकि अल्लाह ताला के पास कोई कमी कोई थोड़ी है खजानों की, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना वो अपने ऊपर इस्तेमाल करने के बजाय ना वो बंदों पे खर्च कर देते हैं अपने खजानों को, नहीं, अल्लाह ताला के पास कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह ताला तो अता करते हैं, लेकिन उस अता को छोटा समझते हैं, ठीक है। माँ बेचारी के पास कुछ होता ही नहीं है, तो वो जो भी देती है अपनी औलाद को तो वो कुर्बान करके देती है अपने आप को, ठीक है। तो ये लफ्ज़ कुर्बानी इसके लिए फिर इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि किताबों में एक वाकया लिखा है, जो कि एक अंग्रेज लड़के, जो कि एक अंग्रेज लड़के ने अपनी वालिदा के बारे में लिखा है, उसको कहते हैं 8 lies of a mother, यानी एक माँ जिसने 8 झूठ बोले, ठीक है, माँ के 8 झूठ।
बंद कर दो। अच्छा
अच्छा तो वो लड़का कहता है, पहला झूठ कि वो लड़का कहता है कि मेरा वालिद बहुत गरीब था, वो फौत हो गया, तो मैं अपनी माँ के पास रहने लगा। अब माँ का कोई जरिया आमदनी नहीं था, तो हमारे घर में जो खाना पकता था वो भी बहुत थोड़ा होता, और हमें भूख लगी होती थी। जब खाना पकता तो वालदा मेरी प्लेट में मेरा हिस्सा डालती और अपनी प्लेट में अपने लिए खाना डालती। फिर खाने के दौरान जब मैं अपना खाना खत्म करने लगता तो माँ महसूस करती कि मुझे और खाने की जरूरत है, तो वो अपनी प्लेट में से चावल मेरी प्लेट में डाल देती थी और कहती थी कि बेटे तुम ये चावल खा लो, मुझे इतनी भूख नहीं है। वो बच्चा कहता है कि बड़े होकर मुझे पता चला कि मेरी माँ उस वक्त झूठ बोल रही होती थी। भूख उसको भी होती थी, लेकिन वो मुझे तसल्ली देने के लिए कहती थी कि बेटे तुम खा लो, मुझे भूख नहीं लगी हुई। ये मेरी माँ का पहला झूठ था। दूसरा, वो कहता है कि फिर चूंकि हमें खाने में कोई अच्छी गजाइत नहीं मिलती थी, तो जब वीकेंड हफ्ते का आखिरी दिन आता था तो मेरी वालदा मुझे करीब में एक दरिया पर ले जाती थी, जहां पर हम फिशिंग मछलियां पकड़ा करते थे, फिशिंग करते थे, ताकि अगर हमें कोई अच्छी मछली मिल जाए तो हम उसको घर में लाकर पकाएं और अच्छी गजा मिल जाए। वो कहता है कि एक दिन मैंने दो मछलियां पकड़ी, उनको लेकर जब हम घर आए तो मेरी वालदा ने उनको पकाया और मुझे खाने के लिए दोनों दे दी। कहने लगा कि मैं बैठकर वालदा के साथ मछली का कबाब खाने लग गया, और चूंकि मछलियां दो थीं और काफी सारे कबाब थे, तो मैं इस तरह से खा रहा था कि जो मछली की हड्डी थी उसके साथ भी कुछ गोश्त लगा हुआ हुआ था, जो मैं खाकर रखता जा रहा था। मेरी वालदा आकर मेरे पास बैठ गई और हड्डियां उठाकर उनके साथ लगा हुआ गोश्त खाना शुरू कर दिया। मैंने महसूस किया कि वालदा भी कबाब खाना चाहती है, तो मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी आप भी कबाब खा लें। तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं बेटा, तुम ये मछली खा लो, मुझे मैं मछली खाना इतना पसंद नहीं करती। ये मेरी माँ का दूसरा झूठ था, हालांकि मछली उसे पसंद थी, इसलिए तो वो हड्डियों के साथ लगा हुआ गोश्त खा रही थी। थर्ड, फिर वो कहता है कि मैं बड़ा हुआ, स्कूल गया, और फिर एक दिन आया कि मेरी वालदा मुझे इम्तिहान के लिए एक दिन आया कि मेरी वालदा मुझे इम्तिहान के लिए लेकर गई। मैं कमरे के अंदर इम्तिहान देने में मसरूफ था, गर्मी थी और मेरी वालदा बाहर बैठी हुई थी। बाहर मेरी वालदा ने मेरे लिए एक कोल्ड ड्रिंक के ग्लास का इंतजाम किया। चुनाची जब छुट्टी का टाइम हुआ और मैं बाहर निकला, तो मेरी वालदा ने मुझे वो शरबत का ग्लास पेश किया। मैंने कहा अम्मी आप पी लें, तो वो मुझे कहने लगी कि बेटे मुझे प्यास नहीं लगी, तुम पी लो। तो वालदा ने वो सारा का सारा जूस मुझे पिला दिया और खुद कुछ नहीं पिया। ये मेरी वालदा का तीसरा झूठ। फिर कहता है कि जब मैं जरा बड़ा हुआ तो मेरे स्कूल के अखराजात भी थे। अब वालदा को कोई ना कोई काम करना था, तो वालदा ऐसा करती कि करीब में एक माचिस बनाने की फैक्ट्री थी, वो वहां से खाली डब्बे लेकर आती थी और घर में रात को बैठकर उनके अंदर माचिसों को भरा करती थी। चुनाचे एक रात मैंने देखा कि वालदा सारी रात बैठे काम करती रही, ताकि इसमें से कुछ पैसा मिले और मेरा खर्चा चले। कहता है कि सुबह के वक्त जब मेरी आंख खुली तो मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी आप सो जाएं। माँ ने मुझे देखकर कहा कि बेटे तुम सो जाओ, मैं अभी थकी हुई नहीं हूं। ये मेरी वालदा का चौथा झूठ था, हालांकि वो थकी हुई थी, लेकिन मुझे उसने कहा कि मैं थकी हुई नहीं हूं, तुम सो जाओ। फिर वो कहता है कि मैंने स्कूल में अच्छी कारकर्दगी दिखाई, जिसकी वजह से मुझे स्कॉलरशिप मिल गई और मुझे अमेरिका की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया, लिहाजा मैं अपने घर से अमेरिका शिफ्ट हो गया। गालबन किसी और मुल्क में रहता होगा, यूरोप या कनाडा वगैरह, तो वो अपने घर से अमेरिका शिफ्ट हो गया। वो कहता है कि जब मैं पढ़ने के लिए वहां चला गया तो फोन पर मेरी वालदा मुझे कहती रहती थी कि अपना ख्याल रखना, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखना, ये करना वो करना। तो कहता है कि पढ़ने के बाद फिर मुझे एक जॉब मिल गई, तो मैंने एक घर भी किराए पर ले लिया, उसके बाद फिर मैंने शादी का भी प्रोग्राम बना लिया, हत्ता कि मेरी शादी हो गई। मैंने जब अपनी वालदा को बताया तो वालदा ने कहा कि बेटा तुम अपनी बीवी को खुश रखना और अपने घर में खुशी से जिंदगी गुजारना। मैंने वालदा से कहा कि अम्मी आप यहाँ आ जाएं, हम मियाँ बीवी अकेले हैं, आप हमारे पास आकर रहे हैं, हमें आपकी कंपनी भी मिल जाएगी और मैं आपके लिए उदास भी हूँ। तो मेरी वालदा ने कहा कि नहीं बेटा, मुझे तो बड़े घर में रहना अच्छा नहीं लगता, मैं अपने इसी छोटे से किराए के घर में रहना पसंद करती हूँ, रहना मेरे लिए ज्यादा बेहतर है। ये मेरी वालदा का पांचवा झूठ था जो उसने मेरे साथ बोला। फिर मेरे पास चूंकि तनख्वाह अच्छी थी, तो मैं चाहता था कि अपनी वालदा को हर महीने कुछ ना कुछ पैसे दे दिया करूं, लिहाजा मैंने एक मरतबा कुछ पैसे अपनी वालदा को भिजवाए, तो मेरी वालदा ने वो पैसे मुझे वापस भिजवा दिए। जब मैंने पूछा कि अम्मी आपने पैसे क्यों वापस भिजवा दिए, तो वालदा ने कहा कि बेटा मेरे पास बहुत पैसे मौजूद हैं, मुझे और पैसों की जरूरत नहीं है। ये मेरी वालदा का छठा झूठ था जो उसने मेरे साथ बोला। फिर कुछ दिन ऐसे गुजरे कि वालदा ने फोन पर मुझसे राबता नहीं किया। मैं भी परेशान था कि 3-4 महीने हो गए वालदा से बात नहीं हुई। तो कहता है कि फिर एक दिन मैंने फोन किया तो मुझे पता चला कि मेरी वालदा बीमार है और अस्पताल में दाखिल है। वो कहता है कि जब मुझे पता चला तो मैं टिकट कटवा कर फौरन अपने घर आ गया। मैं अस्पताल गया और मैंने जब अपनी वालदा को देखा तो मेरी वालदा बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन गई थी, उसका वजन बहुत कम हो गया था। और जब मैं वहां वार्ड के अंदर दाखिल हुआ तो नर्स ने मुझे बताया कि तुम्हारी वालदा कैंसर की मरीजा है, उसको चेस्ट सीने में कैंसर है और उसको बहुत दर्द होती है। लिहाजा तुम अपनी वालदा का ख्याल रखना। चुनांचे जब मैंने वालदा को देखा कि वो इतनी कमजोर हो गई हैं और इतना वजन भी कम हो गया, तो मेरी आंखों में से आंसू आ गए, मैंने रोना शुरू कर दिया। वालदा ने मुझे रोते हुए देखकर कहा कि बेटे तुम रो नहीं, मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। वो कहता है कि ये सातवां झूठ था जो वालदा ने मेरे सामने बोला, और फिर मेरी आंखों के सामने वालदा ने आखिरी हिचकी दी और वो फौत हुई। तो माँ किस किस तरह अपने गम अपने बच्चों से छुपाती है, खुद कुर्बानी देती है, बच्चों को पता नहीं चलने देती। ये वो मोहब्बत है जो अल्लाह ने माँ के दिल में औलाद के लिए डाल दी है। ये रहीमियत की वो सिफत है कि असल में तो रहमत अल्लाह ताला के पास है, मगर उसने उसका छोटा सा एक जर्रा हर माँ को अता कर दिया, ताकि इंसानों को पता चल जाए कि मेरी रहीमियत का क्या मेयार होगा और मेरी रहीमियत बंदों के साथ कितनी है। वो अपनी माँ को देखकर समझें कि अल्लाह अपने बंदों से कितना प्यार करने वाला है। अब मैं अपनी जिंदगी का भी एक वाकया सुना देता हूँ, यानी हजरत अपनी जिंदगी का एक वाकया सुना रहे हैं कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं छठी क्लास में पढ़ता था, उम्र कोई 11-12 साल की होगी। मैंने उस जमाने में अपने अपने उस्ताद से एक आयत सीखी कि मोमिन को चाहिए कि अपनी निगाहें नीची रखे, यानी उस जमाने में भी हजरत तफसीर पढ़ रहे होते थे अपने उस्ताद के साथ बैठ कर। तो कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, तो ये वाली आयत पढ़ी होगी। लिहाजा मुझे अपनी निगाहें नीचे रखने की आदत हो गई, और चूंकि मुझे इतनी तरबियत नहीं मिली थी, इसलिए मैं जरा सख्त मिजाज का बंदा था, यानी तालीम हासिल कर रहे थे और तरबियत भी मिल रही थी, लेकिन इतनी ज्यादा कहते हैं कि नहीं थी, तो मैं जरा सख्त मिजाज का बंदा था। चलता था तो इस तरह नीचे देखता था जैसे किसी बंदे की कोई चीज गिर गई है और वो उसको ढूंढता फिर रहा है। बल्कि मेरी उम्र के लड़के हंसते भी थे, बातें भी करते थे, मगर मैं उनकी कोई परवाह नहीं करता था कि भाई जब शरीयत ने कहा है कि नीचे देख कर चलो तो नीचे देख कर चलना चाहिए। अब नीचे देखने में मुझे ये भी पता नहीं चलता था कि मेरे करीब से कौन गुजरा है, छोटा गुजरा है, बड़ा गुजरा है, मर्द गुजरा है या कोई औरत गुजरी है। अब होता ये कि कभी कभी मोहल्ले की चंद आंटियां जो मेरी वालदा की दोस्त थीं, वो करीब से गुजरती तो मुझे पता भी ना चलता कि वो करीब से गुजरी हैं। लिहाजा वो मेरी वालदा को शिकायत लगाया करती थी कि आपका बेटा हमें सलाम भी नहीं करता, ठीक है। और ये बड़ी सेंसिटिव बात होती है कि जब मोहल्ले के बुजुर्ग या जो है ना वो अंकल आंटी वगैरह बराबर से गुजरे, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे जो है उनको सलाम करें, और अगर बच्चा सलाम ना करे ना तो फिर वो भूलते नहीं है इस बात को, बल्कि वो फिर शिकायत करते हैं जाकर के अम्मा पापा के पास। चुनाचे एक दिन मैं बैठा किताब पढ़ रहा था कि एक आंटी वालदा के पास आई और उसने यही कहा कि आपका बेटा तो मुझे सलाम भी नहीं करता। तो वालदा ने मुझे बुलाया, अम्मी उस वक्त रोटियां बना रही थी, और अम्मी मुझे कहने लगी कि बेटा तुम अपनी आंटी को सलाम भी नहीं करते, तुम इतने ज्यादा बेमुरव्वत क्यों बन गए हो। अब मैंने गुस्से का इजहार किया कि अम्मी मुझे क्या पता, आप इस आंटी से ये पूछें कि क्या मैंने उसकी तरफ आंख उठाकर देखा भी था। तो आंटी ने फौरन कहा कि नहीं, इसने तो ऊपर देखा ही नहीं था। तो मैंने कहा कि जब मैंने ऊपर देखा ही नहीं तो मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे करीब से कोई मर्द गुजरा है या कोई औरत गुजरी है। तो इस मौके पर जब आंटी ने कह दिया कि इसने ऊपर नहीं देखा था, तो मुझे गुस्सा आ गया। गुस्से में मैंने अम्मी से कह दिया कि अम्मी पता नहीं कहाँ कहाँ से ये आंटियां उठकर आ जाती हैं, आपको शिकायत लगाती हैं और आप मुझे ही डांटना शुरू कर देती हैं। चूंकि मैं बच्चा था, लिहाजा ये बात करते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए कि अम्मी मुझे ही डांटती रहती है। अब वालदा ने देख लिया कि मेरी आंखों में आंसू हैं, और मैं गुस्से में वहां से सीधा अपने कमरे में आया और कमरे में बेड पर लेट गया। अब आंटी तो 2-3 मिनट में चली गई, ठीक है। कितनी मजे की बात है, यानी बच्चे जो है ना वो ऐसे काम करते हैं। हजरत भी ऐसे काम करते थे, वालदा के साथ भी गुस्सा हो गए और ऐसे जो है, लेकिन फर्क क्या है कि वो दीन की खातिर ये काम कर रहे थे, अगरचे के नॉट द बेस्ट वे, लेकिन नीयत क्या थी, वो दीन ही थी, कुरान मजीद का हुक्म ही था। जबकि जो दुनियादार स्कूल के पढ़े हुए, स्कूल या मीडिया से जो है वो सीखे हुए, राइट, टीवी से जो है वो इल्म हासिल किए हुए, वो बच्चे वो भी अपने वालदैन के साथ करते हैं, लेकिन किस वजह से करते हैं, गुनाह की वजह से करते हैं, ठीक है, अल्लाह की नाफरमानी की वजह से वालदैन के ऊपर जो है वो गुस्सा हो रहे होते हैं या इस तरह की कभी बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यानी ज्यादा बेहतर क्या है, ठीक है, इट इज नॉट द बेस्ट, लेकिन बेहतर अगर आप तरतीब और तरजीह खाली देखना चाहें तो ज्यादा बेहतर चीज क्या है, जाहिर सी बात है कि अल्लाह की खातिर जो है वो अगर ये काम कर भी रहे हैं तो अल्लाह की खातिर कर रहे हैं ना, ठीक है, तरबियत भी हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, वो चीज़ भी आ जाएगी, लेकिन अपना डायरेक्शन तो सेट हुई भी है। बहरहाल तो बिस्तर पे जाके मैं लेट किया, अब आंटी तो 2-3 मिनट में चली गई। फिर वालदा साहिबा ने अपने चूल्हे की आंच को जरा कम किया और मेरे पीछे कमरे में आई कि देखूं देखूं ये क्या कर रहा है। अब जब वो कमरे में आई तो मुझे अंदाजा तो हो गया कि अम्मी आ रही हैं। मैं आंखें बंद करके इस तरह लेटा रहा जैसे मैं गहरी नींद सोया हो। अम्मी कमरे में दाखिल हुई और मुझे दुआएं दे रही थी कि बेटा अल्लाह तुझे नेक बनाए, अल्लाह तुझे बख्त लगाए, है ना। हजरत की वालदा भी जो है वो भी वलिया थी, तो अल्लाह तुझे बख्त लगाए नेक बनाए, ये अम्मी के अल्फाज थे। और अम्मी को असल में फिक्र ये थी कि ये रोया था और अब कर क्या रहा है, तो मैं सोया हुआ था इसलिए वो पुरसुकून हो गई। फिर इसके बाद अम्मी पाँव की तरफ आई, मेरे पाँव की तरफ आई और उन्होंने बहुत आहिस्तगी के साथ मेरे पाँव को बोसा दी। अब हजरत जी थे भी सबसे छोटे, पूरे खानदान में ना बहुत सारे भाई बहन है हजरत के, लेकिन हजरत की उम्र सबसे कम है, ठीक है। तो अम्मी आई और उन्होंने मेरे पाँव को बोसा दिया। मैं हिला नहीं, लेकिन वो मेरी जिंदगी का एक अजीब सा लम्हा था। मैं हैरान था कि अल्लाह, गुस्सा भी मैंने किया है, गलती भी मेरी है, और माँ का दिल देखो कि वो काम छोड़कर मेरे पीछे देखने के लिए आई है, दुआएं भी दे रही है और फिर दुआएं देने के बाद अपने बेटे के पाँव भी चूम रही है, ठीक है। जब माँ चली गई तो मैंने अपने दिल में अल्लाह से दुआएं मांगनी शुरू की कि ए अल्लाह, कुरान में तो मैंने उस्ताद से पढ़ा था, फला तकुल लहुमा उफ, कि यानी उन्हें उफ तक ना कहो, और मैंने तो अपनी अम्मी के सामने तेवरी चढ़ाई और गुस्से में बात की, अल्लाह तू मेरे उस गुनाह को माफ कर दे। जैसे ही मैंने ये दुआ की तो फौरन मेरे दिल में एक ख्याल आया कि अल्लाह कह रहा है कि मेरे बंदे, अगर मैंने तुम्हें माफ ना करना होता तो मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत करने वाली माँ ना दे। लिहाजा अल्लाह ने अगर ऐसी मोहब्बत करने वाली माँ दी है तो अल्लाह ताला यकीनन हमारे गुनाहों को माफ करना चाहते हैं और हमें अपनी पसंदीदा जगह जन्नत अता फरमाना चाहते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी माँ की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ठीक है, तो हजरत माओ से ही बात कर रही हैं और माओ की कदर करने की तौफीक अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। असल में हजरत हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमें अपनी औलाद के अच्छे माँ बाप बनने की तौफीक, ठीक है ना। और जो अल्लाह ताला ने हमें ये मुकाम और मर्तबा अता फरमाया है, अल्लाह ताला इस मुकाम और मर्तबे के मुताबिक अपने बच्चों के साथ रहम व करम का मुआमला करने की तौफीक अता फरमाया, ठीक है ना। और अपने वालदैन के साथ अगर अल्लाह ताला ने उनको अभी जिंदा रखा हुआ है तो उनके साथ भी रहम का मामला और तौफीक और नरमी का मामला करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन अक्सर हम में से ऐसे हैं कि जिनके वालदैन या तो दुनिया में अब मौजूद नहीं है या जो है वो दुनिया से चले गए हैं, तो इस वक्त तो ये सारी की सारी बातें हमारी अपनी इस्लाह के लिए और अपने आप को अच्छी माँ बनाने के लिए, ठीक है। देखें इस वाकये के अंदर भी हमें एक बात जो नजर आ रही है वो क्या, कि हजरत की जो वालदा थी ना वो दुआओं के ऊपर कितना ज्यादा इन्हेसा, ठीक है, कि यानी आम तौर पर मुआशरे में क्या होता है कि जब बच्चा नाराज हो जाता है तो माँ आती है, उसको जो है वो चमकारना शुरू कर देती है, उसको जो है वो लोरियां देना शुरू कर देती है, या उससे जो है वो इधर उधर की बातें करना शुरू कर देती है, लेकिन दुआएं देना ये जैसे कि खत्म हो गया ना, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा होता कि अल्लाह ताला से उसके लिए जो है वो दुआएं करें। और ये आखिरी मौजू हजरत ने यही रखा है ना कि माँ अपनी औलाद के लिए दुआएं करे, ठीक है। तो नेकों का जो तरीका होता है वो यही होता है कि वो दुआ से बात शुरू करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो दूसरे काम करते हैं, अच्छे दूसरे काम करते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तौफीक से हमने इस मौजू को पढ़ करके आज मुकम्मल किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस इल्म को जो कि उसने हमें अता फरमाया, इसके वसाइल अता फरमाए, ऐसे मशायख अता फरमाए कि जिन्होंने इन मौजूआत के ऊपर इतनी ज्यादा तफसील के साथ जो है वो बातें कही लिखी, हमारे लिए उनको जो है वो बाकायदा यानी इतना आसान बना करके हमारे सामने किताबी शक्ल के अंदर भी रखा, अपने लेक्चर्स भी जो इन मौजूआत के ऊपर दिए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी नेमतें हैं, बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमतें हैं, ठीक है ना। ये आप खुद भी अच्छी तरीके से जानती हैं कि ये लोगों के पास मुयस्सर नहीं है, लोगों के पास एक्सेस नहीं है इन सारी मालूमात का, इन सारे इल्म का, इस किस्म की गहरी सोच का, राइट? ऐसे जो है वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस का, कि ये मसला हो जाए तो उसको ऐसे हैंडल करें, ये मसला हो तो ऐसे हैंडल करें, बल्कि सिर्फ रिएक्टिवली हैंडल ना करें कि मसला होगा तो अब उसको हम ऐसे हैंडल करेंगे, बल्कि प्रोएक्टिवली, यानी प्रोएक्टिवली का मतलब ये होता है कि मसला पैदा होने से पहले ही ऐसा इंतजाम किया जाए कि मसला पैदा ही ना हो। इसको भी मसले को सॉल्व करना कहते हैं, कि मसले को पैदा होने से पहले ही जो है वो खत्म कर दिया जाए। तो इतना सारा इल्म जो अल्लाह ताला ने हमारे सामने ला के रख दिया है, इसकी कदर करनी अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है? तो अब हम जो है ना वो इस इल्म को पढ़ें, समझें, इसका तकरार करें, इसको रिपीट करें, दोहराएं, क्योंकि बहुत सारी बातें तो एक दफा में समझ में भी नहीं आ रही होती, तकरार करने के ऊपर वो समझ में आती है। और दूसरी बात ये होती है कि जो चीजें पहले समझ में आ भी गई होती है ना, वो हमें भूल जाती हैं बहुत सारी, तो तकरार करने से फिर वो चीजें जो है वो हमें याद रह जाती हैं और हमारे लिए उनके ऊपर अमल करना आसान हो जाता है। तो इल्म की कदर जो है ना वो फिर इस तरह से की जाती है, ठीक है? और जिस नेमत की आप कदर करेंगे, अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह ताला उस नेमत को बढ़ा दे, ठीक है? यानी इल्म में इजाफा फरमाएंगे अल्लाह ताला, और उसके ऊपर अमल करना भी आसान फरमा देंगे, ठीक है? यहाँ पे किसी ने कुछ लिखा है, पढ़ लेते हैं कि माँ अपने बच्चों को दुआ तो देती है पर औलाद बदसलूकी करती है। माँ अपने बच्चों को दुआ तो देती है लेकिन औलाद बदसलूकी करती है, तो या तो आप थोड़ी देर पहले क्लास के अंदर मौजूद नहीं थी, या आप उसमें कुछ और काम कर रही थी और सोच रही थी, ठीक है? जब हम इस बात पे यानी जब हम ये बात कर रहे थे कि माँ अपने औलाद को जो है ना वो कुछ गलत किस्म की दुआएं दे रही होती है, अक्सर ऐसे ही हो रहा होता है, ठीक है? तो अक्सर तो ये होता है कि माँ दुआ भी गलत कर रही होती है, तो फिर औलाद जो है वो बदसलूकी उसकी जारी रहती है, क्योंकि माँ सही दुआ करेगी तो फिर उसकी बदसलूकी दूर होगी ना, अल्लाह ताला उसकी बदसलूकी को दूर करेंगे। तो या तो ये मसला भी होता है, और या ये कि क्या कहते हैं, ये भी होता है कि भाई अल्लाह ताला ने कुछ आजमाइशें रखी होती हैं, अगरचे कि हम काम ठीक ठीक कर भी रहे होते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि हालात जो है ना वो एकदम से ठीक नहीं हो जाते, क्योंकि उनका इस वक्त जो है ना वो एक मुश्किल शक्ल में बाकी रहना, ये हमारे हक में ज्यादा बेहतर है, ठीक है? ये हमारी इस्लाह के लिए, यहाँ ये हमारे दर्जात की बुलंदी के लिए ये चीज भी अहम होती है कि अभी मुश्किल हालात जो है ना वो हमारे ऊपर बरकरार रहे, ठीक है? लेकिन ये उस वक्त उस सूरत में होता है कि जब हम अपनी तरफ से काम ठीक कर रहे होते हैं, ठीक है? तो फिर मुश्किल हालात जो होते हैं वो हमारे लिए खैर का बायस बन रहे होते हैं। लेकिन जब इल्म ही गलत है, इल्म ही खराब हुआ हुआ है, उसकी बुनियाद पर हम अमल ही गलत कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो बुरे हालात हमारे ऊपर आ रहे हैं वो दर्जात की बुलंदी के लिए नहीं होते, वो असल में हमारी कम इल्मी, कम वाकिफियत की एक सजा होती है, कि हमने वाकिफियत क्यों नहीं हासिल करी, हमने सही इल्म क्यों नहीं हासिल किया, और हमने अपने अमल की जो है वो इसलाह क्यों नहीं की, ठीक है? तो दोनों सूरतें याद रखें ताकि गलती से हम बच सकें। अच्छा, इन्होंने लिखा है कि क्या हम मंगल और जुमेरात वाली तकरार में शामिल हो सकते हैं? जी, आप जरूर शामिल हो सकते हैं, जो भी चाहें वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो आप अपना नाम जो है वो हमें बता दें, एक मैसेज कर दें सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर कि भाई वो तकरार सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो फिर हम उनको बना दें, ठीक है? कुछ आप भी तो अपनी तरफ से जरा पहल करें ना, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए अपने वादे को पूरा फरमाएगा, ठीक है? और हमें अल्लाह ताला उसके लिए वसीला बना ले तो हमारा हमारा हमारी सआदत है इसके अंदर। अपनी तरफ से कुछ पहल तो करें, फिर अल्लाह ताला फिर असबाब बना देगा उसे, ठीक है? तो जो जो अगर चाहते हैं कि वो तकरार सेशन का हिस्सा बने, वो तकरार सेशन होता क्या है, बस कुछ खवातीन जो है वो जूम के लिंक के ऊपर आ जाती हैं और वो बाकायदा डिस्कस करती हैं कि जी इस क्लास के अंदर ये बातें हुई थी, ये पढ़ा था, कुछ ने नोट्स बनाए हुए होते हैं, वो अपने नोट्स दूसरों के साथ शेयर कर लेती हैं, और इस तरह से जो है वो उनकी दोहराई हो जाती है। इसके अंदर ना कोई ना तो उस्ताद मौजूद होता है वहां पर, ठीक है ना, और ना जो है वो कोई आपसे कोई कोई पाबंदियां होती हैं, ना जो है वो कोई आपसे जो है पूछ गछ हो रही होती है। बस आप यानी रिलैक्स, तो यानी आप लोग गपशप करने के लिए, बातचीत करने के लिए इकट्ठे होती रहती है ना एक दूसरे के साथ, है ना। माशाल्लाह जुमे का दर्स होता है तो दर्स सुनने तो पता नहीं कितने लोग आ रहे होते हैं, लेकिन दर्स के बाद जो चाय पे बैठ करके गपशप होती है तो उसमें तो माशाल्लाह नागाना नागानी होना चाहिए, माशाल्लाह बहुत पाबंदी के साथ लोग आते हैं उस गपशप के लिए। तो भाई ये इल्म के इजाफे के लिए, सही इल्म हासिल करने के लिए गपशप नहीं लगा सकते। ये एक तकरार सेशन क्या है, ये गप गप सेशन समझ लें उसको। लेकिन नीयत इसके अंदर क्या है कि हमें इल्म नाफे हासिल हो जाए, हमारे गलतियों की इसलाह हो जाए, ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाए, ये नीयत के साथ क्यों नहीं हम इकट्ठे हो सकते। इतना मुश्किल है कि आज तक जो है ना वो बस जो कर रहे हैं बस वही कर रहे हैं, महीनों गुजर चुके हैं, बस दो चार खवातीन जो तकरार करती हैं बस वही कर रही, और कोई करता ही नहीं, हत्ता कि जिनको ऐड भी करते हैं ना वो भी नहीं आती। माशाल्लाह कितना मतलब कितनी कदर कर रहे हैं ना हम इल्म की, ठीक है। और फिर अल्लाह ताला कितनी हमारी मदद फरमाएंगे इसके ऊपर, है ना। माशाल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए, तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।